نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ہم دیکھ رہے تھے کہ کامیاب لوگوں میں کیا خوبیاں ہوتی ہیں, تو جس پہ ہم نے اپنا لاسٹ سیشن چھوڑا تھا وہ کیا تھا کہ وہ لوگ جن کو مجبوراً کوئی کام کرنا پڑتا ہے وہ تھک جاتے ہیں, وہ غیر ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں, مجبور کر دیے جاتے ہیں, نہ نہیں کر سکتے تو کام تو کرنا ہے, یہ درست نہیں ہے. آج میں ایک چھوٹا سا آپ کو سوچنے کا نقطہ دوں گی, پوچھوں گی آپ سے, بلکہ آپ لوگ پھر اس کو اپنے آپ سے پوچھیں گے کہ اکثر میں تھکن کا شکار ہوتی ہوں. تھکاوٹ ہے میرے اندر, کیا میں تھکی تھکی رہتی ہوں, فریش رہتی ہوں؟ میں نے دیکھا کہ ہمارے کلچر میں, انڈو پاک میں خاص طور پہ, خواتین جب گھر کی بہت ساری ذمہ داریاں ان پہ ہوتی ہیں تو ہر وقت تھکن کا احساس ہوتا ہے ان پہ, تھکاوٹ. میاں صاحب گھر آئے ہیں, پیچھے ہو جاؤ, تھکے ہوئے, ابو تھکے ہوئے, ان کے پاس نہ آنا. اچھا جی, بچے اسکول سے تھکے ہوئے آئے ہیں, ماں سارا دن گھر کا کام کر کے تھک گئی تھک گئی. یہ آپ جملہ عام سنتے ہوں گے. گھر میں کوئی آئے تو پہلے سے موجود گھر والا کیا کہتا ہے, آج تو صبح سے تھک گئی, بیٹھی نہیں, آج موقع ہی نہیں ملا, آج آفس میں کام بہت, آج تو بہت تھک گئی. تو تھکن کب ہوتی ہے؟ یعنی یہ چھوٹی سی بات کر کے آپ کو مزید ایک خوبی کی طرف احساس دلاؤں گی. ایک انسان صرف اس کام کے کرنے سے تھکتا ہے جس کو وہ انجوائے نہیں کرتا. آپ کے بچے کھیل رہے ہیں, آپ کہیں گے یہ تھک جائے گا, وہ تھکتے نہیں, تھکتے کیونکہ وہ کھیل کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. آپ کے شوہر یا بھائی یا باپ جن کو کاروبار کا جنون ہے, کمانے کا شوق ہے, آپ فون کرتے ہیں, آپ گھر آ جائیے, مہمان آ گئے, کہیں جانا ہے, ابھی آتا ہوں, ابھی آتا ہوں, ابھی آتا ہوں. آپ کو ترس آ رہا ہے, صبح سے گھر سے گئے, میں ابھی کھایا بھی نہیں ہے, کھانا جو دیا ساتھ وہ واپس آ گیا. کیوں؟ آپ کے خیال میں وہ تھک گیا لیکن آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ نہیں تھکے ہوئے. وجہ کیونکہ وہ اپنے اس بزنس کو انجوائے کر رہے ہیں, ان کو نوٹ آتے بھی دکھ رہے ہیں اور ایک سیٹسفیکشن بھی ہوتی ہے جو کام کیا وہ کیا. ایک اچھا ٹیچر ہے, وہ پورے دل سے ایک اندر ڈوب کے اپنے پڑھاتا ہے, آپ کو کبھی ان پہ تھکن کا اثرات نہیں دکھیں گے. کچھ لوگ ہیں, آپ ان کو رات کے 12 بجے بھی دیکھ لینا تو وہ نہیں تھکے ہوتے, اور کچھ دن کے ابتدائی حصے میں ہی تھک جاتے ہیں. فرق کس بات کا ہے؟ فرق اس بات کا ہے کہ آپ اس کو انجوائے نہیں کرتے. جس چیز کو ہم انجوائے نہ کریں ہم اس سے تھک جاتے ہیں, ہم اس کو بوجھ سمجھتے ہیں, ہمارے اوپر مسلط کی ہوئی ہے, کسی کے کہنے پہ کر رہے ہیں, کسی کو نو نہیں کہہ سکے اس لیے کر رہے ہیں. آپ اگر اپنی زندگی سے تھکن نکالنا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ ڈو واٹ یو لائک ٹو ڈو. جس چیز میں انسان کو مزہ آئے نا وہ کرنا چاہیے. چلیے اب ہم اپنے اوپر لیتے ہیں, پڑھنے آتے ہیں ادھر, پڑھانے آتے ہیں ادھر, ہیلپ کرنے آتے ہیں ادھر, تھکتی ہوں کہ نہیں؟ ہر ایک اپنے آپ سے پوچھے. ماشاء اللہ آپ اسٹوڈنٹس ہیں, کوئی آپ سے پوچھتا ہے 4 گھنٹے کی کلاس ہے اب تھکتے نہیں, تو آپ کیا کہیں گے؟ نہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا, وقت ختم ہو جاتا ہے. کوئی نئی سسٹر آ جائیں, کوئی گیسٹ, کو پہلے دن جو آپ کے ساتھ آئیں, تو وہ تو 2 گھنٹے بعد ہی تھک جائیں گی کیونکہ ابھی ان کا ٹیسٹ نہیں ڈیولپ ہوا. آپ پڑھتے ہوئے کیوں نہیں تھکتے؟ کیونکہ آپ اپنے شوق سے آتے ہیں. اور کبھی کوئی بچی بچہ کسی کے کہنے پہ بھیجا جائے, ماں زبردستی اس کو بھیج دے نا, تو میں نے ایسی اپنے ہی اسکول کی کلاسز دیکھی ہیں کہ ان بچیوں کو جن کو ماں باپ بائی فورس بھیج رہے ہوتے ہیں یا ماں باپ کہتے ہیں جاؤ, تو وہ ہمیشہ یہ گلا کرتی ہیں کلاس کا ٹائم بہت لمبا ہے, اس کو چھوٹا کیا جائے. چھوٹا کر کے بھی دیکھ لیں وہ پھر بھی بوری ہوتے ہیں. تو زندگی میں اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو بیٹھ کے سوچیں, جو میں کر رہی ہوں وہ میرے لیے کتنا اہم ہے؟ بس اب قرآن سیکھ رہی ہوں, اہم ہے کہ نہیں؟ آپشنل ہے کہ کمپلسری ہے؟ کمپلسری ہے, پڑھنا ہے, ضرور پڑھنا ہے. مزہ نہیں آ رہا, آئی ڈونٹ ہیو اینی انٹرسٹ ان ریڈنگ, رائٹنگ, لسننگ, تو پھر اس میں انٹرسٹ پیدا کریں. یعنی جو کام آپ کو کرنا ہی ہے, آئی ہیو ٹو, پھر اس میں دلچسپی لیں. دس از دا اونلی سلیوشن, ادروائز کبھی بھی اس کو نہیں کر سکیں گے. نیکسٹ تھنگ, آپ نے اپنے آپ کو उन चीज़ों में उलझाया हुआ है कि जो ऑप्शनल है, करें तो भी ठीक ना करें तो भी ठीक, लेकिन आपको मज़ा बड़ा आता है उसमें और आप उसमें थकते भी कोई नहीं। जैसे हमारी पाकिस्तानी सिस्टर्स खाना पकाने से नहीं थकती, मज़ा आ रहा होता है, पार्टीज दावतों से हम नहीं थकते, बहुत सारे काम हमने अपनी जान को लगाए होते हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मज़ा आ रहा है। तो जिन चीज़ों में आपको मज़ा आ रहा है ना, उसके बारे में फिर एक सेकेंड थाट दें खुद को, ये मज़ा तो है बट इसका बेनिफिट क्या है? आप यकीन करें कि दूध का दूध और पानी का पानी आएगा। आप एक पूरा हफ्ता, 1 वीक अपने आप को ऑब्जर्व करें, मुझे किन कामों में मज़ा आ रहा है और मैं मज़े से कर रही हूँ, लेकिन एंड ऑफ द डे हासिल कुछ नहीं है। शॉपिंग में लोगों को मज़ा आता है, आपको तो एंड में सर में दर्द होती है, अगले दिन फिर चल पड़ेंगी, मज़ा आ रहा है सिर्फ। कुछ ले ना ले, एक ये भी क्रेविंग होती है आपको, तो ऐसी खुजली होती है ना जैसे हाथ में, मज़ा आ रहा है। तो आप अपने एक हफ्ते के कामों में से उन चीज़ों को ढूंढें। दो चीज़ें मैंने आपको बताई अभी, एक वो जिनमें आपको मज़ा तो आता है बट आपका बेनिफिट कोई नहीं है उसमें, और दूसरी वो चीज़ें जो आपको करनी ज़रूर है लेकिन आप थक जाते हैं उसको करने में। करना क्या है? चेंज कर दें, जो काम करना है फिर उसमें दिलचस्पी लें। वो कहते हैं ना, रो के भी करना है तो हंस के भी करना है, तो हंस के कर लेते हैं, इंजॉय करते हैं इस चीज़ को, ठीक है? आप देखेंगे कि थकन नाम की चीज़ आपकी ज़िंदगी में कोई नहीं होगी। आराम करता है इंसान, खाता भी है, सोता भी है, थकता नहीं है। तो आज से आपने अपने आप को इस नज़र से देखना, मैं थकी थकी तो नहीं रहती, और आप देखेंगे थकन ही बाद में हाई ब्लड प्रेशर में चेंज होती है, थकन डिप्रेशन में चेंज होती है, थकन फ्रस्ट्रेशन में, उलझे हुए चिड़चिड़ेपन में चेंज हो जाती है, थकन वाले को बाज़ दफ़ा शुगर भी होने का ख़तरा होता है। तो आप आज से थकना छोड़ दें। फ़ैज़ा फ़रक़्ता फ़ंसब, कुरान में आता है जब तू फारिग हो जाए ना तो फिर मेहनत कर। हम कहते हैं फारिग हो जाए तो छुट्टी कर, कहा नहीं, जब फारिग हो जाए तो फिर मेहनत कर। कैसे? कि एक काम कर लिए, फारिग हो गए, इंजॉय किए, अल्हम्दुलिल्लाह, सेंस ऑफ अचीवमेंट मिल गई, गो हेड, आगे चले, फिर अगली चीज़, फिर। और आप याद रखेंगे कि अकम्प्लिशमेंट ये बंदे को थकावट से दूर कर देती है। सारा दिन लगा के आप घर साफ कर रहे हैं ना, लेकिन एंड पे वो घर पे एक लुक डलती है आपकी और आप कहते हैं वाह क्या खूबसूरत लग, हर चीज़ वैसी है जैसी होनी चाहिए, थकन दूर हो जाती है। तो अधूरी चीज़ों को पूरा करें जिंदगी में, कभी तो एक काम करना ही है, कर लीजिए। अब मैं आपको पूरे शऊर से कह सकती हूँ कि जो लोग रिवायती तौर पर तो दीन के साथ जुड़े रहते हैं लेकिन अभी तक बाज़ाब्ता उन्होंने उस दीन को नहीं किया, तो फिर वो अपने आप से खुश नहीं है। बस वह हमारी तबीयत का बोझ, हमारे अंदर चिड़चिड़ापन, हमारा गुस्सा, वो इस बात का रिएक्शन होता है कि कोई भी तो काम मुझसे पूरा नहीं होता, मैं करूं तो क्या करूं। हर वक्त ही साथियों के साथ छोटी छोटी बातें चलती हैं, तो कल भी किसी से ऐसे ही मशवरा था उनका कोई काम का कि ये करती हूँ वो कर रही हूँ, अब ये हो रहा है अब वो हो रहा है, या उन्होंने बीमार हैं तो किसी ने उनको रुखिया दिया और को वजीफ़ा कहा कि आपने फजर से लेकर शाम तक इतनी दफ़ा करना है तो बीच में बात नहीं करनी और छोड़ना नहीं है। तो वो एक दिन तो कर लेंगी, अगले दिन तो नहीं कर सकती, तो मुझे कहने लगी मैं क्या करूं। इस तरह की बातें सवाल करते हैं लोग कि किसी ने कहा सूरह बकरा पूरी पढ़ें तो फ़ायदा होता है वरना छोड़ दिया तो फ़ायदा नहीं होगा, तो मैं पूरे 250 पारे रोज़ नहीं पढ़ सकती और शायद उसमें भी कुछ और ख़ास तरीके। तो मैंने उन्हें कहा कि देखिए पढ़ना शुरू कर दें जितना आप दिल से पढ़ सकती हैं, हदीस में आता है कुरान तब तक पढ़ो जब तक तुम्हारी उसमें तवज्जो रहे, फिर उसको छोड़ दें, अगले दिन वहीं से शुरू कर लें, जब पूरी हो जाएगी तो फिर दोबारा शुरू कर दें। ये उससे बेहतर है कि आप मारे बांधे सर पे डंडा रख के खड़े हैं कि नहीं मैंने सुबह से लेकर दोपहर तक इसको या 1 घंटे के अंदर या असर से मगरब में ज़रूर पढ़ना है और आपकी तवज्जो नहीं और काम नहीं और बीच में बोलना भी नहीं, तो बस दफ़ा इबादत के नाम पर भी कुछ चीज़ें ऐसी मुश्किल हो जाती हैं। अब आगे चलते हैं हम इस बात पे कि कामयाब लोग जो होते हैं ना, वो अपनी सलाहियतों की नशोनुमा को हालात या इत्तफाकात पर नहीं छोड़ते। अगर मेरे हालात साजगार हुए तो मैं अपनी सलाहियतों से फ़ायदा उठा लूँगी, अगर इत्तफाक हो गया, यानी दो लफ्ज़ बड़े बड़े लिख लें, हालात इत्तफाकात। हालात क्या हो गए? सरकमस्टांसिस। इत्तफाकात क्या हो गए? चांस। कामयाब होने वाले अपने आप को हालात पे और चांस पे नहीं छोड़ते, वो इनकी नश्वनुमा के काम पर सख्ती से अमल करते हैं। नहीं, मुझे करना है। हालात से ऊपर उठ के, रवैयों से ऊपर उठ के, आप देखिए, चांस ना लगा तो क्या करेंगे फिर? चांस की टिकट के लिए तो अब यहाँ से इंग्लैंड भी नहीं जाते। कहते नहीं, कंफर्म टिकट मिलेगी तो घर से एयरपोर्ट जाएंगे। तो क्या कामयाबी जैसी खूबसूरत चीज़ को आपने सिर्फ एक चांस पे रख दिया? फिर इसी तरह याद रखिए कि हम ना सिर्फ अपनी आदत का शिकार हैं, बल्कि हमने अपने आप को अपनी ही बनाई हुई रुकावटों के हिसार में कैद किया हुआ है। ये जो लफ्ज़ है ना, अपनी ही बनाई हुई रुकावटें, इनका हिसार ये कौन से आता है? फिर समझ आएगा मेरी अपनी बनाई हुई रुकावटें क्या हैं और मैं उसके हिसार में कैद कैसे होती हूँ। मसलन आप देखिए कि मैं ये सोच लूँ कि यहाँ आना था मैंने, और अगर मैं इस वक्त घर से निकली तो मेरे बच्चे माइंड करेंगे कि सैटरडे संडे का दिन है और आप जिस वक्त भी हमें छोड़ के जा रही हैं, या हस्बैंड कहेंगे आज तो मेरी छुट्टी थी और आप आज घर में नहीं हैं और मैं चली गई तो बहुत होगा। ये हिसार है, ये मैंने अपने से सोचा, रुकावट बनाई। एक है कि मैं आना चाह रही थी, गाड़ी कोई नहीं थी खड़ी, या बस ही नहीं थी, हड़ताल थी, कुछ भी, यानी आप समझ लें, एक रियल सिचुएशन होती है, एक सपोज्ड और बनाई हुई सिचुएशन होती है। हम खुद से सोच लेते हैं, अगर मैं आज घर से निकली तो फिर मेरे घर वाले ये सोचेंगे, ससुराल में रहती हूँ अगर मैंने आज ये अपनी दोस्तों को घर में बुला लिया तो मेरी सास का मूड तो ज़रूर ही बिगड़ेगा। ये होती है खुद साख्ता। इसका इलाज क्या है? दूसरों के बारे में अच्छा सोचें। नहीं, मेरे हस्बैंड कहेंगे हाउ डेडिकेट वोमेन इज माई वाइफ, कि छुट्टी वाले दिन भी अपने काम पे जा रही है। आप ऐसे रीजनिंग करें, मेरे शौहर को फख्र होगा मुझ पे कि मुझे इतनी अच्छी बीवी मिली है जो फारिग रहती नहीं है, अपनी जिम्मेदारियों को अधूरा छोड़ना पसंद नहीं करती। और आप अपने शौहर को इस तरह से पेम्पर भी कर लें, आपको पता है कि आपकी वाइफ ऐसी है, वो कहते हैं छुट्टी कर लो, आप कहते हैं आप क्या हाल है, आपकी वाइफ ऐसी गैर जिम्मेदार है। इस तरह से बात करके ब्रेन स्टॉर्मिंग कर दें। वो लोग जो अपने कामों की जिम्मेदारी खुद कबूल नहीं करते, वो हमेशा दूसरों की सिम्मत देखते हैं। जुमले को लिख लें, जो लोग अपने कामों की जिम्मेदारी खुद कबूल नहीं करते, वो हमेशा दूसरों की सिम्मत देखते हैं। वो बलूगत को पहुंचते ही नहीं। बहुत से बालिग अफराद हकीकतन तमाम जिंदगी नाबालिग, यानी इमेच्योर ही रहते हैं। हम जूं जूं बड़े होते जाते हैं, हमें ऐसे फैसले करने पड़ते हैं जिनकी बिना पर या तो हमें नए नए रास्ते मिल जाते हैं, यानी आपकी जिंदगी के कुछ फैसले आपको नए मोड़ दिखाते हैं, या मौजूदा रास्ते भी तंग हो जाते हैं। कैसे? मिसाल लीजिए, मसलन जब हम अपना हल्का अहबाब, यानी दोस्तों का सर्कल, फ्रेंड सर्कल महदूद रखते हैं, मुख्तसर होता है, तो हमारे ख्यालात भी सिकुड़ कर महदूद हो जाते हैं। यानी आपकी सारा दिन में या पूरे हफ्ते में बस दो दोस्तों से ही बात होती है, या फ़ोन पे आप एक अपनी दोस्त से बात कर रहे हैं, या कभी मुलाकात के लिए जाएं तो एक या दो, तो आपका स्नैरियो कितना होगा? इतना सही होगा माइंड का, सिकुड़ जाएंगे आप। लेकिन अगर आप ज़्यादा लोगों से मिलते हैं तो यकीन करें, जितना आप लोगों से सीखते हैं उतना तो आप किताबों से भी नहीं सीखते। फिर इसी तरह से हम अपनी तालीम के लिए जो मैदान चुनते हैं, यानी फील्ड के आपका, इन्हीं पर हमारी मुलाजमत का इन्हिसार होता है। रोज़ाना हम जिंदगी में सिर्फ वही करते हैं जिसमें ज़्यादा मुशक्क़त ना उठानी पड़े। इंसान अपनी तबीयत के एतबार से सहल पसंद होता है। जिम्मेदार अफराद जब आज़ादी का ऐलान करते हैं तो अपना हकीकी किरदार अदा करने के लिए खुद रास्तों का इंतखाब करते हैं। क्या पता चला? आपको अपने रास्ते खुद बनाने हैं। आप कहते हैं कि दरिया अपना रास्ता बना लेता है, चाहे पहाड़ों में से गुजर रहा है, आबशारे हैं, वो कहाँ से रास्ते बना रही है, पत्थरों को काट के निकल रही है। आपको भी अपनी जिंदगी में अगर कुछ करना है तो आपको अपने रास्ते खुद बनाने पड़ेंगे। सर नहीं फोड़ती लहरें, आप देखिए समंदर से लहरें आती है ना, सर नहीं फोड़ती, पत्थर रास्ते में आता है ना, आधी इधर से और आधी इधर से निकल के आगे चली जाती है। थोड़ा सा जोर टूट जाता है, लेकिन थोड़े से जोश के बाद वो दोबारा उसी जोश में आ जाती हैं। तो ज़ाती ज़िम्मेदारी हमारी सबसे अहम इर्तकाई हालत है। इर्तका क्या कि हम अपने आप को रोज़ इम्प्रूव करें, तरक्की करें। और जो ये कहता है कि इसे तो हालात ने बनाया है, वो बेहद गैर जिम्मेदार आदमी है। यानी मसलन आप कहें, या मैं अपने बारे में आपसे कहूँ, मैं आज जो भी हूँ बस मैं तो हालात की पैदावार हूँ, मैं कहाँ थी ऐसी, फिर मेरे हालात ऐसे हुए, उन्होंने मुझे एक आयरन वूमेन बना दिया। ये गलत तरीक़ेकार है। यानी आप हालात के सहारे इस तरह की हुई हैं। माशरे या समाज यानी सोसाइटी से आज़ादी हासिल हो ही नहीं सकती, ये जुमला लिखिए, वल्ला ही आज हम अपनी सोसाइटी के कैदी हैं, असीर हैं हम लोगों के। लोग क्या कहेंगे, लोग बातें करेंगे, लोग माइंड करेंगे, लोगों से खाया हुआ है, लोगों को बुलाना पड़ेगा, लोगों को दिया हुआ है, लोगों से लेना पड़ेगा। इन सारी बातों से आज़ादी हासिल हो ही नहीं सकती अगर इनफरादी सेल्फ कंट्रोल और ज़िम्मेदारी को निकाल दिया जाए। हम इसी वक्त तक आज़ाद रहते हैं जब तक हम आज़ादी को ज़िम्मेदारी से इस्तेमाल करते हैं, लोगों के हाथों में ना बिकें। यरगमाल होना होता है, किडनैप्ड पर्सनैलिटीज, तरस आते हैं उन लोगों पे जो जी खुद रहे हैं, हिसाब उन्होंने अपनी ज़िंदगी का अल्लाह को देना है, सज़ा या जजा उनके लिए उनके अमाल के, लेकिन वो लोगों से पूछ पूछ के जीते हैं। क्या अल्लाह और उसका रसूल काफ़ी नहीं है क्या मुझसे कुछ पूछे? आप बताइए मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कैसी ज़िंदगी बसर करनी चाहिए। आजकल हम वीकडेज में सीरत कर रहे हैं ना, मुझे खुद ऐसे लग रहा है कि मेरे लिए शायद हालात के मुताबिक जब भी पढ़ाती हूँ ना तो सीरत के नए ही रंग दिखते हैं। मैं सोचती हूँ ये अल्लाह का फ़ैसला था कि रमज़ान के बाद हम सीरत शुरू करें, क्योंकि पूरी चीज़ें ही तो नए सिरे से चल रही हैं ना। हमेशा हर साल नया साल बनता है, कितनी चेंजेस, कितने लोगों से इंटरेक्शन, कितनों से मिलना, वर्किंग स्ट्रेटेजी आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा अच्छी तो कोई सिखा ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। आप कभी हालात के मोहताज नहीं हुए, बल्कि ये जो बात हम कह रहे हैं, अगर आप में से सब ने पढ़ी तो हुई है, कहीं ना कहीं सुनी भी होगी, सच बताएं कि नबी सल्लम के नबूवत से लेकर दुनिया से जाने तक हर दौर में हालात साजगार थे या नासाजगार थे? नासाजगार। मक्का के 13 साल तो नासाजगारी की इंतहा थी ना, तो बैठ जाते, मजबूर हो जाते, बिरादरी से टक्कर, ख़ानदान से टक्कर, कुंबे से टक्कर, रिश्तेदारों से टक्कर, दो बेटियों को तलाक हो गई, टक्कर है ना। एक हाथ पे सूरज रख दो, एक पे चांद रख दो, फिर भी यही कहूँगा ला इलाहा इल्लल्लाह। ये है फर्मनेस, ये सिखा के गए आप हमें। ज़ाया नहीं किया, नबी सल्लम खुदा ना खास्ता ज़ाया हो जाते अगर वो खुद को हालात के थपेड़ों पर डालते। बस देखिए नीचे गाड़ियों की आवाज़ें आती हैं ना आपको, आप लोग चलाते भी हैं बहुत सारे लोग, क्या आपने कभी अपनी गाड़ी को रोड पे जो ट्रैफिक है उसके हालात पे छोड़ा? एक इधर धक्का पड़ेगा, एक उधर पड़ेगा। ये जो स्टेयरिंग को पूरे कंट्रोल से थामना, ब्रेक पे नज़र रखना, क्लच को अपने हिसाब से दबाना, ये क्या है कि आप अपने रोड पे जो हालात हैं उस पर नहीं, आप अपनी अक्ल से कि मैं अपनी गाड़ी को कैसे बचा के ले जाऊँ। जब हालात के धारे पे आप लोग होते हैं ना, अनप्रीडिक्टेबल, क्या मतलब है इसका उर्दू में? पेशनगोई करना, यानी जो बंदा अपने बारे में ये कहता ही नहीं, कह मैं देखती हूँ मेरे हालात क्या होते हैं, कल फिर वही करूँगी, दैट मीन उसने खुद को हालात के हवाले छोड़ा हुआ है। और जो कहता है यस आई विल बी हेयर एट 7 o'clock, उसने हालात को अपने हिसाब से किया है। वो कहते हैं ना जो हो जौके यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें, ये बात हो रही है, जौके यकीन कम है। इतनी कमज़ोर पर्सनैलिटीज़ हैं हमारी, हम इतने अंदर से टूटे फूटे हैं, वल्लाही ये तो हमें पता लगता है जब कब्र में जाते हैं कि हमने तो 5% भी नहीं अपनी खूबियों का इस्तेमाल किया। क्या आपका ख्याल है इस दुनिया में जितने लोग दुनिया से जी जी के जा रहे हैं वो अपना मैक्सिमम दे के जा रहे हैं इस दुनिया को? सूरज अपना मैक्सिमम दे रहा है, चांद अपना मैक्सिमम, सितारे, पहाड़, पूरी कायनात मैक्सिमम दे रही है, इंसान इस दुनिया को लीस्ट मिनिमम दे रहा है। लीस्ट का लफ्ज़ है मिनिमम से पहले, थोड़े से भी थोड़ा। अगर इंसान अपनी सलाहियतों का पूरा देता तो ये दुनिया जन्नत होती। हज़रत अबू बकर ने पूरा देने की कोशिश की, उमर ने दी, उमर बिन अब्दुल अजीज़ का दौर था, मुसलमानों ने किस तरह से इस्लाम को और दुनिया को फ़ायदा दिया कि ज़कात वसूल की गई तो हुकूमत के पास माल आया, तो कहा कि जी बताइए इस माल को कहाँ इस्तेमाल करें, यानी पूरा आर्टिकल है, मैंने एक छोटी सी कहीं पढ़ के भी सुनाया था, सिर्फ आपको मेमोरी से सुना रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि जी बैतुल माल में माल है, उन्होंने कहा जाओ यतीमों में दे दो, गरीबों में दे दो। कहने लगे है ही कोई नहीं, पैसा है गरीब ही कोई नहीं, सबके पास है माल। कहा अच्छा उधर नहीं है तो फिर तुम ऐसा करो कि कैदियों पे लगा दो। कहा फिर भी बच गए। उधर से एक कहा जो वो इल्म सीख रहे हैं उन पे लगा दो। कहा वो भी चले गए। कहा अच्छा जाओ वो किसी जगह सड़कें बननी है, वो कहते हैं वो भी कोई नहीं है, पैसे हैं जरूरत कोई नहीं गवर्नमेंट को। कहा अच्छा कुछ नहीं है तो जाओ फिर इस पैसे का दाना खरीदो और दूर पहाड़ों में जाके परिंदों के लिए डालो कि वो खा ले। इसको कहते हैं वम ममा यन्फो नासु फयम्कुस। उन लोगों ने इंसानियत को दिया अपना, इंसानियत में भूख खत्म हो गई, प्यास खत्म हो गई, गड़बड़े खत्म हो गई। कहा कि चलो फिर अब ज़कात तो लेनी है ना, तो फिर परिंदे खा लें, उनको तो अल्लाह की मखलूक के खिला दें। ये हो जे दुनिया अगर मैं आप अपनी सलाहियतों का दी बेस्ट दें। मुझसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आपने कल क्या किया, या मुझसे ये नहीं पूछा जाएगा मैंने क्या किया, वो तो अल्लाह को पहले ही पता है। मुझसे ये ज़रूर पूछा जाएगा कि मैं क्या कर सकती थी और मैंने नहीं किया और मैंने ज़ाया किया। देखिए असली और नकली नोट में यही फ़र्क होता है। किसी के पास $100 का नोट हो और वो उसमें से $4 की चीज़ें खरीद लाए वर्थ की और पैसे बाकी सारे 100 ही दे आए, तो बेवकूफ़ है ना। बच्चे ही कर सकते हैं, असली की बजाय हो सकता है $100 के नकली $1,000 वाले नोट खरीद लाए। जिंदगी में याद रखें ये जिंदगी एक टाइम है, वन चांस। जिन लोगों को आज दुनिया खराजे तहसीन पेश करती है, आप भी देते हैं उनको, कोई रदी अल्लाह अन्हु में तो कोई अलैहि सलाम में तो कोई मुहद्दिस मौलम है, उन्होंने अपनी जात का दी बेस्ट दुनिया को दिया, वरना वो कब्रिस्तान आपके मेरे सामने है। हम में से किसी को नहीं पता जब किसी को हम दफन कर रहे होते हैं तो हमें उसकी जुदाई पे ज्यादा रोना चाहिए या उसके अंदर जो उसकी सलाहियतें साथ ही दफन हो रही हैं उस पर ज्यादा रोए। तो अपना अख्तियार खुद संभालने का मतलब क्या है कि जहन, माइंड, हुनर, स्किल्स, सलाहियतें, क्वालिटीज, वक्त, टाइम, चार चीज़ें बोल देती हूँ, जहन, हुनर, सलाहियतें और वक्त। और जो कुछ भी हमारे पास है इन सब का इस्तेमाल हम बेहतर से बेहतर तौर पर करें। इंतहाब का हक हमारा होता है। यहाँ जाती दयानत और जिम्मेदारी तय करती है कि हम जिंदगी के इस खेल में जीतेंगे या हारेंगे। और याद रखिए कि कायनात का एक कानून है, क्या इंग्लिश में कहते हैं एवरी एक्शन हैज रिएक्शन, हर अमल का एक रद्द अमल होता है। ये साइंस का एक बहुत बड़ा असूल है। अगर आप अपने जहन को सही तरह इस्तेमाल करें, हुनर का सही इस्तेमाल करें, तो इस इस्तेमाल के असरात जरूर जाहिर होंगे। तो करना क्या है, गोया कि हमें अपना इख्तियार, लिखिए इख्तियार, चॉइस, टू चूज, खुद संभालना चाहिए, जिम्मेदारी कबूल करें। अपनी ही जात से हमें वक्त, हुनर और कारनामे निकालने हैं। फिर बोलो, अपनी ही जात से हमें वक्त, हुनर और कारनामे निकालने हैं। कोई नहीं निकालने देगा आपको। जिम्मेदारी का मंशूर इन लफ्जों में एक शायर ने बयान किया है। कहता शायर, मुझे एक आम सी औरत या एक आम सा मर्द नहीं बनना, ये मेरा हक है कि मैं खास बनूं अगर मैं बन सकूं। समझे, क्या आप और मैं नहीं ये सोच सकते, मुझे आम औरत नहीं बनना, मीडियोकर्स बन के नहीं जीना। लोग दुनिया में भी एवरेज बन के नहीं जीना चाहते, आपने देखा ही होगा बहुत सारे लोग हैं ना, वो कहते हैं कि नहीं हम अपना मेयारे ज़िंदगी बुलंद करेंगे। सोचते हैं ना आप लोगों को, अपने ऊपर लेकर सोचिए, मैं क्यों आम औरतों की तरह जीऊँ। आम औरतें तो जो करते हैं, जो होती हैं, फिर उनका अंजाम भी तो आम ही होगा ना। देखिए अल्लाह ने तो जन्नत के भी 2-3 दर्जे बता दिए ना, कहीं असहाबुल यमीन है तो कहीं मुकर्रबीन है, और 100 दर्जे हैं जन्नत के। ये 100 दर्जे एफर्ट्स के दर्जे हैं। अन्न लैसा लिलइंसानी इल्ला मा सा। फिर ये शायर कहता है कि मुझे मौके की तलाश है, तहफ्फुज़ की नहीं। चलिए मैं छुप नहीं रहा किसी के पीछे कि हाय मुझे सिक्योरिटी चाहिए, मुझे मौके चाहिए, मैं एक्सपोज होना चाहती हूँ। और जब मौके होते हैं तो उसमें थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ता है। तहफ्फुज़ में क्या होता है, बस छुप जाओ किसी के पीछे, मुझे कोई कुछ कहे ना, मुझे कोई बात ना सुननी पड़े, हाय मुझे ये ना हो। कहता है कि मुझे एक पालतू शहरी नहीं बनना, मैं एक सोचा समझा खतरा मोल लेने का ख्वाहा हूं, रिस्क टेकर बने। जिंदगी में रिस्क टेकर ही जीतते हैं। डिफेंसिव वॉर्स कभी नहीं जीती गई, ऑफेंसिव यानी इकदामी जंगें जीती जाती हैं, दिफाई जंगें कभी नहीं जीती जाती। जिसको इंग्लिश में आप कहते हैं ना, डोंट बी अपोलोजेटिक। आप हर बात में अगले से माफी मांगने लग जाए, वो अच्छा सॉरी सॉरी क्यों कह रहे हैं, अपोलोजेटिक, अगला आपके सर पे और चढ़ाई करेगा। नहीं, आप आगे चलिए, बनाने के लिए, तामीर के लिए, फिर कामयाब हो या नाकाम हो, लेकिन आप खुद से खुश जरूर होंगे। बहुत सारे लोग जो डेथ बेड पे होते हैं ना, उनको इस चीज़ की हसरत होती है, जो सोचा था वो किया नहीं, जो कर सकती थी वो किया नहीं, या जो करना चाहती थी वो हुआ नहीं, और मुझे मुफादात के लिए आज़ादी का सौदा नहीं करना। मुफादात क्या होते हैं? बेनिफिट्स। बाज़ दफ़ा हम बेनिफिट्स लेने की खातिर अपनी आज़ादी बेच देते हैं, ये भी याद रखिएगा। मुझे किसी आका के सामने नहीं झुकना, ये मेरा विरसा है, कि तन कर रहूं जो चाहूं वो करूं। यानी मेरा एक ही आका है, ये आका ना बोलो, मैं क्यों किसी के आगे झुकूं? मुझे जुरत के साथ दुनिया का सामना करना है, ताकि कह सकूं मैंने ये कर दिया। मुझे जुरत के साथ दुनिया का सामना करना है। यकीन करें, ये बातें आपके अंदर एक नया खून पैदा कर सकती हैं, आपकी बीमारी सेहत में बदल सकती है, अगर आप इसको यकीन से सुन रहे हैं तो। कामयाब लोग अपने ख्यालात के मुख्तार होते हैं। लिखें, हमारे तो ख्यालात भी दूसरों के मुख्तार होते हैं, जो लोग चाहते हैं हमसे वो सोचवाते हैं। अपनी जिंदगी के आका होते हैं, यानी आप अपनी जिंदगी के आका खुद बने। वो अपनी जिंदगी के खुद मेमार होते हैं, वो अपना वक्त जीतने में गुजारते हैं। इन्हें पता होता है कि गंवाने के लिए जरा सा भी वक्त बाकी नहीं है। वो कहता है ना कि मताए हयात गुम करके तेरे दर पे आया हूं। तो खुलासा क्या है? नंबर एक, जिंदगी में आपके साथ जो कुछ हो रहा है वो आपके अपने हाथों की कमाई है, आपके अपने कामों का नतीजा है। कामयाब लोग 100% जिम्मेदारी अपनी कबूल करते हैं। कामयाब है तो कहें कि हाँ मैं कामयाब हूँ अपने उन पे, और नाकाम हूँ तो इसमें मेरी वजह। यही मुस्बत सेल्फ कंट्रोल है। असल में हमने सेल्फ कंट्रोल की एक नई जहत पढ़ी है ना, कि सेल्फ कंट्रोल है इस बात का नाम कि आप जो करना चाहते हैं फिर कर जाए। और कामयाब अफराद जानते हैं कि वह अपनी ज़िंदगी को कई रुख देने पर कादिर हैं। आज जहाँ खड़ी हूँ, 2 साल बाद मैं किसी और एंगल से भी तो किसी काम से फ़ायदा दे सकती हूँ लोगों को, मैं क्यों नहीं दे रही? यानी एक रुख पे ना अपनी ज़िंदगी को रखें। और कामयाब लोगों को ये पता होता है कि सेल्फ कंट्रोल जहनी और जिस्मानी सेहत की चाबी है। बहुत सारे लोग जिस्मानी तौर पे कमज़ोर हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि हम खाना नहीं ठीक खाते, बीमार हैं, काम बहुत करते हैं। नहीं, अंदर एक जंग लगी होती है। नाकाम लोग कहते हैं समझ में नहीं आता मेरे साथ ये क्यों होता है, जबकि कामयाब इंसान कहता है ये सारी मेरी जिम्मेदारी है। कामयाब लोग अपनी जिंदगी की कश्ती के मल्लाह खुद होते हैं, खुद चलाएं अपनी गाड़ियां। आप भी जिंदगी के दबाव को बर्दाश्त करने का गुर सीख सकते हैं, बशर्ते कि आप ये जिम्मेदारी कबूल कर लें कि आप खुद से कुछ करेंगे। और याद रखें कि ज़िंदगी में क्या होता है इसकी कोई अहमियत नहीं है, अहमियत इसकी है कि इसे आप किस तरह समझते हैं। तो सेल्फ कंट्रोल का फिर खुलासा लुबे लुबाब के, कि ज़िंदगी में हर चीज़ हरकत में, कुल्लू फी फलकी यस बहून मतहरक, हरकत में बरकत है। हमें शरीर के सामने सैकड़ों मुतबादिल रास्ते होते हैं, जिनको हम चुन भी सकते हैं और रद्द भी कर सकते हैं, अल्टरनेट रास्ते होते हैं ना। तो अपनी ज़िंदगी में अल्टरनेट रास्ते ढूंढिए। और आखिरी बात क्या है कि कामयाब शख्स वाकया साज होता है, वो तारीख बनाता है। क्यों नाम है 10-15 लोगों के हमारे दिलों दिमाग पे? मोहम्मद अली जिन्ना का नाम है, अल्लामा इकबाल का नाम है, इमाम बुखारी का नाम है, बिलाल का नाम है। ये चंद नाम क्यों? क्योंकि इन्होंने तारीख बनाई। कितने रोज मरते हैं इस आसमान के नीचे, वो खुद साज होते हैं, जो खुद को बनाते हुए जाते हैं ना, वो खुद भी नहीं बनते। आज से अपने सेल्फ कंट्रोल पर अमल शुरू करें। इसकी कुछ टिप्स दे देती हूँ आपको क्विकली। यानी प्रैक्टिकल टिप्स। नंबर एक, जिंदगी में जो पोजीशन आपकी है, खुले दिल से इसकी अच्छाई या बुराई की जिम्मेदारी कबूल करें। अब आपकी पोजीशन है ना, कहीं आप माँ हैं तो कहीं कहीं जॉब करती हैं, जो पोजीशन है आपकी, खुले दिल से इसकी अच्छाई और बुराई की जिम्मेदारी कबूल करें, एक्सेप्ट इट। दूसरी टिप क्या है कि मुझे ये करना है, ये जुमला कभी ना बोलें, इसको बदलें, मुझे ये करना है, ये जुमला ना बोलें, बल्कि क्या कहा करें, मैंने ये करने के लिए तय किया है, यानी जुमले में जरा वजन पैदा करें। फिर थर्ड थिंग क्या है कि मुस्बत नजरिया रखें, पॉजिटिव अप्रोच, मेरी खिदमत मेरा काम मेरा सरमाया है, यानी आज जो मैं खिदमत दे दूंगी, जो काम करूंगी, ये मेरी जिंदगी की मता है। फिर थोड़ी देर खुद को तन्हा करें, मुराकबा कहते हैं इसको, गर्दन सीधी करके ऐसे लोग आंखें बंद करके बैठे, जहनी और जिस्मानी आराम करें, नशा वाली चीजों को अपनी जिंदगी से निकाल दें, चाहे चाय का नशा हो अगर आदत ना बन जाए। तो अगली टिप क्या है कि दूसरों पर काम मत छोड़ें, खुद करें। किसी खत का जवाब ना आया हो तो इसे याद दहानी कराएं। बाद जब हम दूसरों पर डिपेंड करके भी अपने हाथ काट देते हैं, ये मैंने भी देखा है, हम जलते कुड़ते तो हैं लेकिन हम खुद नहीं काम करते। फिर एक और टिप, आज का काम कल पर कभी ना डालें। फोन पर ज्यादा बात मत करें, वक्त के जाया करने से बचें। फिर नेक्स्ट टिप क्या है, वो आदत जो आप छोड़ देना चाहते हैं, इनकी फहरिस्त बनाएं और इनके मुतबादिल तरीके लिखें, फिर इन पे अमल शुरू करें, अल्टरनेट हैबिट्स डेवलप करें। फिर अगली बात, अपने काम में लगे रहें, कोल्लू के बैल की तरह नहीं, इंसान की तरह। आप दूसरों के आगे बैल बन के रहेंगे तो वो आपको और बैल बनाएंगे, तो इंसान बनिए, अपनी ज़रूरियात मनवाइए, अपनी आइडेंटिटी शुरू कीजिए। फिर इसी तरह अपने इल्म और हुनर को वसी करें, पढ़ें, मजीद सीखें, आप जो स्किल्स हैं आप में उसको अच्छे तरीके से करना सीखें, इल्म सीखें, सेमिनार, किताबें, रिकॉर्डिंग्स, वेबसाइट्स, एप्स, इनसे मदद लें, अपने आप को लें। आज सुबह मैं एक छोटी सी चीज़ सुन रही थी, तो जब मैंने ऐसी वो टॉपिक जो मेरे माइंड में था, आपको ये पढ़ाना होता है तो मेरा दिल होता है कि मैं कोई ऐसी चीज़ जो फ़ायदा दूँ। यकीन करें जितने लिंक्स आए वो इंडियन लोगों के थे, हिंदू थे, नामों से भी पता चल रहा था, मैंने सुने उनके आर्टिकल, तो मैंने सोचा कि एक शख्स अल्लाह को माने ना माने, अल्लाह के साथ शरीक ना, लेकिन दुनियादारी की पर्सनल ग्रूमिंग की बातें तो वो बहुत अच्छी कर रहा है, बात समझ रहे हैं। तो अल्लाह ने अक्ल दी हुई है, इस्तेमाल आप कब कैसे करते हैं। तो ये थी चंद बातें सेल्फ कंट्रोल पे, कोई बात जो सुनते हुए ज़हन में आई पूछ लीजिए या बता दें। जी जी, नाम तो चंद लोगों के होते हैं और अल्लाह को पता है कौन का है, ये हमने नामों के लिए तो करना भी नहीं, लेकिन अपने दिल के सुकून के लिए ये ज़रूर करते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर यहाँ रुकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें नाकाम ना करे। मैं तो अपने लिए भी यही दुआ करती हूँ, आपको भी यही दुआ दूंगी कि अल्लाह आपको ज़ाया होने से बचा ले। यकीन करें वो लोग काबले रहम हैं, एक ही वक्त माँ ने सबको पेट में रखा, कुछ क्या करके चले गए और कुछ नशेबाज होके चले गए, कोई शराबों के नशों में धुत दुनिया से जा रहे हैं, कोई चोरियां चकारियां करके दुनिया का जीना धोबर कर रहे हैं। तो ये अल्लाह की रहमत है कि उसने मुझे आपको शऊर दिया है, इस शऊर को इस्तेमाल करें। मुसलमान हैं, बाशऊर हैं, कुरान की समझ है, अल्लाह ताला ने मुझे आपको बहुत सारे मौके दिए, हमें अल्लाह ताला ने क्या कुछ दिया है, तो क्या मैं इन स्किल्स को ज़ाया कर दूंगी। चुटकी काट के खुद से बोलें ज़रा, काफिर होती, मुशरिक होती, शराबी होती, जानी होती, पापी होती, क्लब में जाती, डांस करती, कोई गंदी चीज़, स्मगलर होता, बड़े से बड़े वर्स्ट लफ्ज़ अपने नाम के साथ लेकर दिल की गहराई से के अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो क्या फिर इसका हक नहीं अदा करना। अल्लाह ताला हमें अमल वाला बनाए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।